नमस्कार मित्रगण, शिवरात्रि हो गई और हम शिव महिम्न स्तोत्र भी पढ़ते चल रहे हैं, तो यह एक अच्छी बात है। आइए अगले श्लोकों की पढ़ाई आरंभ करते हैं। अद्य वयम् द्वादशम तथा च त्रयोदशम श्लोकम् पठिष्यामः। शृण्वन्तु। कवि पुष्पदन्तः लिखति, अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासे पित्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। तो मित्रों, यहाँ फिर से रावण की ही कथा का संदर्भ लिया है, जैसा पिछली बार के एक श्लोक में लिया था। और कवि ये कहता है कि खलाहा अर्थात जो खल पुरुष होते हैं, अविवेकी या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका उदाहरण देखो कि उनका स्वभाव वापस दुष्टता पर ही चला जाता है। तो यह इस कथा से स्पष्ट होता है जो रावण की कथा है। यहाँ पर कवि ने भुजवनम शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि रावण के 10 सिर थे और उसकी 20 भुजाएं थीं, तो मानो ये भुजाओं का एक जंगल या वन ही था। इस प्रकार कल्पना करते हुए रावण की भुजाओं के लिए भुजाओं का जंगल, यह उपमा कवि ने दी है। तो त्वत् सेवा समधिगत सारम अर्थात तुम्हारी सेवा करके या तुम्हारी प्रार्थना पूजा करके रावण को वह सारी शक्ति मिली थी। तुम्हारी सेवा ही उस बल ऐश्वर्य का सार थी अर्थात रहस्य थी, ऐसा रावण उसके विषय में यह कहा जा रहा है। तो यहाँ अमुष्य अर्थात जो विख्यात हुआ है और समधिगत अर्थात जो किसी लक्ष्य के पास पहुँच गया है, अधिगत अर्थात पहुँचना, समधिगत अच्छे अर्थ में अच्छी तरह से भली प्रकार से पहुँचना, लेकिन उसका अविवेक देखो कि बलात् कैलासेपि, उसने बलपूर्वक कैलास को भी उठाकर ले जाने की बात सोची, और विक्रमयतः विक्रम पूर्वक, और उसकी जो 20 भुजाएं थीं उसका सहारा लेते हुए उसने कैलास पर्वत को उठाना आरंभ किया। यद्यपि वह जानता है कि तुम्हारा अधिवास कैलास में है, लेकिन फिर भी उसने यह दुस्साहस किया। तो फिर जब तुम्हें क्रोध आया तो क्या हुआ कि अलभ्या पाताले प्यलस चलितांगुष्ठ शिरसी, अलस चलितांगुष्ठ अर्थात अलस भाव से जो तुमने अपने पैर का अंगूठा जरा सा हिलाया और कैलाश पर्वत को जरा सा दबा दिया, तो उसके नीचे झुक करके जो रावण उसे अपने बाहुओं पर उठाने का प्रयास कर रहा था, वह नीचे पाताल तक धंस गया। और इस प्रकार तुमने मात्र अपने पैर के अंगूठे की एक छोटी हलचल से कैलाश पर्वत पर आया हुआ संकट टाल दिया। तो यह रावण का जो वर्ताव है उसे देख करके कहना पड़ता है कि ध्रुवम अर्थात सत्य ही है कि जो उपचित हो जाता है अर्थात संपन्नता जब आ जाती है किसी खल पुरुष में, तो वह मुह्यति अर्थात मोह में पड़ जाते हैं। तो जब कोई अविवेकी पुरुष, खल पुरुष ऐश्वर्य को पा लेता है तो वह मोह में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि जो है वह अविवेकी बन जाती है और वह गलत ढंग से सोचना आरंभ करता है, उसकी भी मति मारी जाती है। तो जो अविवेकी या खल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे जिसके कारण प्रतिष्ठा पाते हैं उसी पर उलट करके नुकसान करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। इसीलिए जिस रावण को सारा बल ऐश्वर्य तुम्हारे कारण मिला, वही रावण तुम्हें ही कैलाश समेत उठा करके ले जाने की बात सोचने लगा, और जो बल उसे तुम्हारे कारण प्राप्त हुआ उसी बल का प्रयोग उसने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए करने की चेष्टा की। तो रावण के लिए पुष्पदंत कहता है कि उसे पाताले अपि प्रतिष्ठा अलभ्या आसीत, उसे पाताल तक में भी वह स्थिर नहीं हो पाया, इतना वह गहरा धंसता चला गया। और यहाँ दो शब्दों में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, त्वयी और अलस चलितांगुष्ठ शिरसी, और इसका अर्थ हुआ, इसे सती सप्तमी प्रयोग कहा जाता है, कि तुम्हारे द्वारा अंगूठा हिला भर देने से रावण का यह हाल हुआ। और त्वदधिवसतौ अधिवास, यह शब्द है अधिवास अर्थात रहना, निवास करना, तो त्वद अधिवसतौ, तुम्हारा अधिवास कैलाश में होने के बावजूद भी रावण ने यह प्रयास किया। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस कैलाश पर्वत पर उसी के आराध्य शिव रहते हैं उसे उठाने का दुस्साहस करना उचित नहीं है। अब इस श्लोक को पुनः एक बार दोहरा करके अगला श्लोक देखते हैं। अमुष्यत्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम बलात् कैलासे पित्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेप्यलस चलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रुद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सती मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्नकस्य उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। तो यहाँ कवि ने बाणासुर की कथा का उपयोग किया है। बाणासुर जो कि प्रह्लाद का प्रपौत्र था अर्थात बेटे का पोता, तो वह भी एक ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली असुर और सम्राट था जो कि शिव का परम भक्त था। तो यहाँ पर बाणासुर के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः अर्थात जिसने तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित किया है, तीनों लोक उसके ही परिजन हो गए हैं, ऐसा बाणासुर। और सूत्राम्नः अर्थात इंद्र और महिम्नः अर्थात शंकर, इस प्रकार कवि ने ये दो शब्द इस महिम्न स्तोत्र में उपयोग में लाए हैं। तो रुद्धिम अर्थात जो समृद्धि है या ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, तो बाणासुर की संपत्ति और ऐश्वर्य इतना अधिक हो गया था कि उसने इंद्र की संपत्ति को भी लज्जित कर दिया था। अधस चक्रे, मानो बाणासुर के चक्र के अंदर इंद्र की संपत्तियां छिप गई थी, इंद्र का ऐश्वर्य उसकी छाव में आ गया था, अर्थात इंद्र का ऐश्वर्य बाणासुर के ऐश्वर्य के सम्मुख कुछ भी नहीं था। तो ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला बाणासुर, उसे भी यह ऐश्वर्य कहाँ से मिला? तो हे वरद, हे वर देने वाले शंकर, तुम्हारी उपासना से मिला। और न तत् चित्रम, तत् अर्थात वह, चित्रम, यहाँ चित्रम शब्द विचित्र या आश्चर्य के अर्थ में लिखा गया है। तो न तत् चित्रम, यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोहो, क्योंकि वह बाणासुर त्वच्चरणयोहो तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पास इतना वैभव इतनी संपत्ति आ गई कि वह इंद्र की संपत्ति को भी ढक के रख दे। और आगे कवि कहता है, न कस्या उन्नत्यै हि भवति यः शिरसि त्वयि अवनति ही, जो सिर झुका करके तुम्हारे सम्मुख खड़ा हो गया और तुम्हारी उपासना करने लगा, उसकी उन्नति कैसे नहीं होगी? तो बाणासुर की भी उन्नति का रहस्य यही है कि वह परम शिव भक्त था। तो मित्रों, आज इस शिव महिम्न स्तोत्र की पढ़ाई को हम यहाँ समाप्त करेंगे। चलते चलते इस बाणासुर की कथा का एक थोड़ा सा अगला अंश बता दूं कि जो हम आसाम देखते हैं अपने देश के भूगोल में, और खास करके जो आसाम की राजधानी है गुवाहाटी, वही प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर नाम से विख्यात थी, और यह नगरी बाणासुर के साम्राज्य की राजधानी या केंद्र की नगरी हुआ करती थी और यहाँ से बाणासुर राज्य किया करता था। परम शिव भक्त था और प्रह्लाद का परपोता होने के कारण वह एक सच्चरित्र और सज्जन पुरुष भी था। तो बाणासुर की कथा वापस से हम भागवत पुराण में देखते हैं कि इसी बाणासुर की बेटी उषा श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के प्रेम में पड़ गई और दोनों ने विवाह करना चाहा तो बाणासुर ने मना कर दिया। उस समय कृष्ण और बाणासुर में युद्ध होने लगा और बाणासुर को लगा कि वह परास्त हो सकता है, तो उसने शिव की स्तुति गा करके शिव को आह्वान किया कि हे शिव, मेरी सहायता के लिए आप पधारिए। तो वहाँ शिव जी बाणासुर की सहायता के लिए उपस्थित हुए और इस प्रकार कृष्ण और शिव में एक बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर दोनों ही सत्प्रवृत्ति के लोग थे और दोनों ने ही यह समझ लिया कि यह युद्ध निरर्थक है, तो थोड़े काल के बाद दोनों ने युद्ध को रोक लिया और दोनों ने बाणासुर को समझाया कि उषा और अनिरुद्ध का विवाह होना एक बहुत ही उचित और पूरे संसार के लिए अच्छी बात होगी। फिर बाणासुर भी मान गया। इस प्रकार यह शिव और कृष्ण का जो युद्ध था उसकी समाप्ति इस आनंददायी घटना से हुई कि उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। तो शिव महिम्न स्तोत्र के साथ ये सारी कथाएं भी हम धीरे धीरे जान रहे हैं, जो पुष्पदंत ने शिव महिम्न स्तोत्र के लिए एक माला की तरह इन श्लोकों में पिरोया है। तुम इनका आनंद लेते रहो और सुनते रहो पठामी संस्कृतम, जो कि मैं लीना महिंदड़े कौशलम न्यास की ओर से ये पाठ तैयार करके तुम तक पहुँचाती हूँ। तो तुम इन्हें सुनते रहो, पढ़ते रहो संस्कृत, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।